दीदी जो प्रश्न निकाल करके क्लास में सबसे पूछती थी, मुझे क्लास के बाद बुला के कहती थी तुमको जो इसमें से अच्छे प्रश्न लगे वो तुम टाइप करके ले आओ और उनकी कापियां बना करके लो, कार्बन कापियां, क्योंकि और कोई फोटो कापी मशीनें नहीं थी। एक ही पेज को मैं करीब 3-4 बार क्वेश्चन आंसर 5-5-6-6 कापी कार्बन कॉपी निकालता था, और फिर जब निकाल के लाता था 9 बजे तक, 8:30-9 बजे तक नाश्ता नहीं करना पहले, क्लास के तुरंत बाद पहले ये काम करके फिर दीदी के पास बैठ करके यशोदा दादी के ऑफिस में, एक तरफ दादी बैठती थी एक तरफ हम बैठते थे, और सभी यशोदा दादी की साथ बैठ करके पोस्ट लिखते थे जितने पत्र आते थे। जैसे साकार में बाबा ने सभी पत्रों का उत्तर दिया होगा, मैं समझता हूँ मेरे लोग के घर में बाबा का हर 15 दिन में एक पत्र आता था, उन सभी पत्रों में मेरा नाम होता था। तो बाबा तो सभी बच्चों को अपने हाथ से 4 लाइन में लंबे लंबे पत्र लंबे लंबे अक्षरों में लाल लाल अक्षरों में लिख देते थे, और यशोदा दादी उस पर फेयर करती थी क्योंकि वो पढ़ने में नहीं आते, सिंधी भी कोई बाबा की नहीं पढ़ सकता, तो यशोदा दादी उसको हिंदी में या सिंधी वालों को सिंधी में दोबारा लिखती थी उसके ऊपर। वो पत्र बहुत से बाबा के हमारे पास आए थे। तो जब मैं बाबा के घर में आया और सबसे स्थूल सेवाएं करते हुए मैंने टाइप सीखी, क्योंकि कोई मजदूर तो घर में थे नहीं, माइयां मजदूर नहीं थे, झाड़ू भी लगानी है, हाल में कोई भी मजदूर नहीं आ सकते थे, दीदी के कमरे में, हाल में, बाबा के कमरे में, सुबह सुबह पहले नंबर में सफाई करने की हमारी ड्यूटी थी। तो ये सब कार्य करते हुए मैंने बाबा के, दादी के, दीदी के साथ विशेष पत्र लिखने की सेवा शुरू किया, और जितनी पोस्ट आती थी मुझे कहती थी तुम पढ़ो भी और इसके जवाब भी दादी के साथ लिखो बैठ करके। तो 10 बजे तक पोस्ट लिख करके, पोस्ट पूरी करके, एड्रेस वगैरह डाल करके हाथ से सबको भेजने के बाद नाश्ता मिलता था, करते थे सभी। इस प्रकार ये सेवा करते हुए मैंने 1976 में पूरी मुरली डिपार्टमेंट मुझे मिली, क्योंकि भाई अचानक वापस लौकिक में चला गया जो टाइप करता था, और एक ही टाइपराइटर थे, इसलिए मैं धीरे धीरे पूरा ही डिपार्टमेंट टाइप का मेरे हाथ में आया, मुरली टाइप करना, प्रश्न उत्तर निकालना, सब सेवाएं स्थूल हो रही थी वो भी चलती थी, उसको छोड़ा नहीं था, रोटी बनाना, धोबी घाट करना, सफाई करना, नाइट ड्यूटी देना, और सबसे बड़ा काम था सवेरे एक जगह पर पानी गर्म करते थे, एक ही बॉयलर था जहाँ पे कपड़े जुदा होते ना घर प्रेस वाले, वहां पर एक बॉयलर जलता था, रात को पहरा दो देते थे, वो बॉयलर जला लेते थे, गर्म कर देते थे, और 4 बजे से सभी बहनों के कमरों में एक एक बैग पानी का गर्म पानी पहुंचाते थे। 3-4 भाई हमारे साथ सेवा देते थे, सब कमरों में गर्म पानी बाल्टी से पहुंचाते थे। तो ये स्थूल सेवाएं सब करते हुए भी ये स्थूल के साथ सूक्ष्म सेवा और ज्ञान योग की सेवा करने का मुझे चांस मिला। जब दीदी अव्यक्त हुई तो ड्रामा चेंज हुआ, बहुत जबरदस्त चेंज हुआ। जैसे अभी दादी अव्यक्त हुई तो और बहुत बड़ा परिवर्तन दिखाई दे रहा है, क्या परिवर्तन होगा हम कुछ दिनों में अनुभव करेंगे। लेकिन दीदी ने जब 83 में जुलाई मास में शरीर त्यागा, अव्यक्त हुई, उसके बाद यज्ञ की सारी स्थूल कारोबार जो हाथ से चल रही थी वो मशीनरी युग आ गया, धोबी घाट भी मशीनों पर आ गया, और साथ साथ जो भी और साधन थे भंडारे के अंदर, जो हम लोग लकड़ियों पर रोटियां बनाते थे गीली लकड़ियों पर, स्टीम सिस्टम शुरू होने लगा, स्टीम आया, भंडारा बना बाद में यहाँ के ओम शांति भवन बनने के बाद। तो दीदी के अव्यक्त होने के बाद जो सेवाएं वृद्धि को प्राप्त हुई, ऐसे ऐसे बाबा के बच्चे आए जो यज्ञ को भरपूर किया। पहले यज्ञ में इतना नहीं था, जब ओम शांति भवन बना था तभी भी दादी कहती थी कि मेरे पास केवल 9 लाख का बजट है, 9 लाख में इतना बड़ा ओम शांति भवन बना है, कैसे बना है वो बाबा जाने, बाबा की जादूगरी जाने, लेकिन दादी सचमुच धन लक्ष्मी थी। बाबा तो मम्मा को कहता है ये लक्ष्मी बनने वाली है, लेकिन संगम युग पर धन लक्ष्मी का रूप दादी का था, जो संकल्प कर लिया वो सिद्ध हुआ पड़ा है, होना ही है। आज के वरदान में जो था ना कि अगर तीन शक्तियां हैं किसी के पास तो निश्चय से कहता है ये हो जाएगा, कर लेंगे, कोई बड़ी बात नहीं है। तो वो तीनों शक्तियां दादी के पास मौजूद थी, स्थूल धन नहीं था लेकिन ज्ञान धन का बहुत नशा था। बाबा का इतना ऊंचा ज्ञान धन हमारे पास है और बाबा ने दिव्य बुद्धि का वरदान तो दिया ही है, बुद्धि का भी वरदान दादी के पास था और संबंध संपर्क पोजीशन तो था ही, संबंध संपर्क इतना अच्छा था। तो आज जो वरदान में था, मैं सोच रहा था कि दादी को ये तीनों वरदान, तीनों विशेषताएं दादी के अंदर हमने देखी हैं। संकल्प कर ले कितना प्रोजेक्ट ये है हमारे सामने, कराना ही है, करना ही है, तो उमंग उत्साह भरना, सबसे कराना, दादी जी की बहुत बड़ी विशेषता रही है। और मैं समझता हूँ 71 से आज तक इस वर्ष तक भी एक नया प्रोजेक्ट, एक नई बिल्डिंग दादी ने अपने जीवन काल में खड़ी की है। जितने भी बिल्डिंग्स बनी है एक साल में एक तैयार हुई, चाहे वो इंद्रप्रस्थ पहले पहले बना, ट्रेनिंग सेक्शन के ऊपर की फ्लोर बनी, विशाल भवन बना, अंदर की सारी फ्लोरिंग्स बनी है, ओम शांति भवन बना, भंडारा बना, या वो मेडिटेशन हॉल बना, उसके बाद फिर बाहर के आउटसाइड के सुखधाम, विज्ञान भवन, योग भवन, ये सारी बिल्डिंग्स बनी। ये दादी जी ने अपने संकल्प शक्ति से बहुत दृढ़ता के साथ, यज्ञ में कुछ भी पैसा हो न हो लेकिन एक संकल्प लेकर के ये बाबा को नया भवन देना ही साल। तो रोज हम लोगों के अंदर उमंग उत्साह भर करके, मैं समझता हूँ सभी मधुबन निवासी जितने भी थे सभी ने हर बिल्डिंग में कर्मणा सेवा जरूर की है। जितनी बिल्डिंग्स बनी है 83 तक सब ने छत डाली है, छत के अंदर जो सरिया है वो सरिया बांधी है वायर से, और सभी ने कुछ न कुछ कंक्रीट का काम या चूना लगाने का काम या ऊपर का कोई न कोई स्थूल बिल्डिंग के अंदर स्थूल सेवाएं दादी जी ने खुद खड़े होके की और कराई हैं सबसे। तो ये एक विशेषता रही है कि भले स्थूल में धन था या नहीं था लेकिन ज्ञान धन का नशा धन देवी के रूप में जैसे संकल्प किया। अभी लास्ट में क्या संकल्प करती थी, हम लोग बैठते थे बाजू में रहते थे तो कहते थे देखो आज मेरे हाथ में बहुत खुजली हो रही है, ऐसे दिखाते थे बहुत खुजली हो रही है, यहाँ पर कोई न कोई आएगा बाबा का लाल कुछ न कुछ दे जाएगा, तो हम हंसते थे दादी कैसे आएगा, कहती खुजली से आ जाएगा क्या, हम कहते देखो तुम बैठो यहाँ पर, हमको बिठा लेती थी। एक दिन मैं बैठ निकल गया बाहर, ऐसे आ गया, पता नहीं कोई आया 2-3 लाख रुपए ऐसे हाथ में रख के चला गया, बोले उसको बुला लो, उसको बुला लो, राजू को बुलाओ भी। तो मैंने पता नहीं अभी अभी तो दादी से मैं मिल के आया हूँ क्यों बुला रही है, तो मैं गया तो कहती है तुमको बोला था मेरे हाथ में खुजली हो रही है, मैंने कहा हाँ क्या खुजली में आया, बोले देखो गिनती करो भी। मैं संकल्प करती थी और उसको पता चल जाता था कि अभी कोई बाबा का बच्चा आने वाला देने के लिए। कोई भी प्रोजेक्ट दादी ने ऐसे लिया है, संकल्प किया है और वो प्राप्ति हुई है। तो ऐसे कई अनुभव दादी के साथ देखे हैं, किए हैं कि दादी सचमुच धन देवी थी, धन लक्ष्मी थी, इसलिए आज इतना बड़ा यज्ञ इतना विस्तार को पाया है जो कोई भी प्रकार की कमी में बाबा के घर में नहीं रही। और दूसरा एक विद्या की देवी, जो बुद्धि का वरदान था, दिव्य बुद्धि का, मुझे पता है कि बहुत सारे टेढ़े मेढ़े पत्र सेंटर से आते हैं, दादी के पास कभी भी जाते दादी उसका इतना अच्छा उत्तर लिखाती थी जो आत्मा संतुष्ट हो जाए। और कभी कभी लहर आती थी तो कई पेज का पत्र लिखा, मैं थक जाता था लिखते लिखते, हाथ से लिखता था सामने बैठ करके। नियम बना हुआ था दादी कभी दिन में 1 घंटे से ज्यादा रेस्ट नहीं करते थे, कभी नहीं किया होगा। 3, 3:30, 3:15 कमरे में जाना और 4 बजे जब मोहिनी बहन के सोने का टाइम होता था तो उठ जाते थे और उठ के कहते थे पहले राजू भाई को बुलाओ, फोन करो, अब उनके सोने का टाइम है, मेरा कमरे में आने का टाइम है। तो दादी कहती थी इसके ऊपर चद्दर डाल दो ये सो जाएगी। तो दादी खुद उठ करके उनके ऊपर चादर डाल दिया और मेरे को अपने बाजू में बिठा लिया। फिर सारा पत्र पोस्ट सुनना लिखाना, मैं समझता हूँ कई साल तक इस कमरे में, ये जो दादी कमरा है, मैंने सोफे पर बैठ करके दादी के साथ बहुत रोरियान किया है, बहुत सारे पत्र लिखे हैं। और दादी जी की जो प्रेरणा आती थी, कहती थी आज मुझे नींद नहीं आई, आज मेरे को ये संकल्प आया, आज मुझे ये विचार आया, आज तुम ये लिखो, आज ये लिखो, रोज नई नई प्रेरणाएं, रोज लिखना है। हमने कहा दादी आपका पत्र मैं रोज भेजूं? बोली हाँ, जब मैं बोलती हूँ जरूर उसी समय भेजो। बाद में तो ईमेल का सिस्टम बन गया, चलो ईमेल से पोस्ट जाने लगी, रोज पत्र जाने लगे। लेकिन पहले कहता था कि एक पोस्ट में दादी बहुत खर्चा होता है, खर्चे के नहीं सोचना होता है, दादी क्या करेंगे, 10,000-20,000 का खर्चा एक पोस्ट में हो जाता है। तो कई बार मैं रोक देता था, दादी इतनी नहीं, कोई ऐसी जरूरी बात होती ना, दो चार पत्र इकट्ठा करके पोस्ट कर दो। तो रोज ही नया संकल्प आता था दादी को, आज ये करना, आज ये करना, आज ये करना। वो तो आप लोगों ने देखा होगा, रोज क्लास में आके सुनाती थी कि आज दादी को ये संकल्प आया, आज ये संकल्प आया। क्लास में सुनाने के पहले मेरे कान में आ जाती थी बात, बुला करके बोल देती थी कि आज ये लिखना ही है। तो बहुत सारी प्रेरणाएं सोन्नति के प्रति, यज्ञ के प्रति, कोई कहीं पर कुछ हो गया, खिटपिट हो गई, कोई विघ्न आ गया, कोई रुकावट आ गई, तो दादी को बहुत सारे विचार अंदर अंदर चलते थे कि ये करना है, ये करना है, ये सेवा रही हुई है, अभी तक ये रहा हुआ है। जब एक एक लाख का प्रोग्राम बनाया है, मैं समझता हूँ रोज मुझे बुला के पूछते थे, अभी किस शहर को अभी तक एक लाख वाला प्रोग्राम नहीं हुआ, डेली इस शहर को लिखो, इस बहन को लिखो, नाम सहित लिखो, मेरे नाम से लिखो कि तुमको एक लाख का प्रोग्राम इकट्ठा करना है, एक लाख पब्लिक इकट्ठी करनी। अहमदाबाद से जब शुरू हुआ है, दादी ने धुन लगा दी थी, पूरे भारत के अंदर जितने मेगा प्रोग्राम हुए हैं, दादी रोज बैठ करके मेरे कहती थी तुम फोन करो, तुम पत्र लिखो, तुम ये करो, तुम ये करो। डेली का एक रूटीन बना दिया था, लिखाना ही है, करना ही है, और कोई ना कोई नवीनता मुरली के अंदर जानी चाहिए। जब वरदान शुरू हुए उसकी तो बड़ी कहानी थी, दादी कहे रोज वरदान मुरली में लिखो, मतलब कहाँ से मैं वरदान लाऊं? बोला नहीं तुम बना लेगा, तुम्हारे को बाबा ने वरदान दिया है। तो 1988 में का दिन था, बाबा एकदम लास्ट जो हम सभी पर्सनल मिले थे बाबा से, उसके बाद पर्सनल मुलाकात नहीं हुई। अव्यक्त बाबा 88 में मार्च में ओम शांति भवन में आए थे, और केवल 120 भाई मधुबन के, उस समय 120 था ग्रुप। शाम को 6:30-7 बजे बाबा आए और सुबह 7 बजे गए, 12 घंटे तक रहे, और उन 12 घंटे में केवल 120 भाइयों को ही वरदान दिए। आप समझ सकते हो एक एक को कितना बोला होगा। तो जब मैंने सुबह सुबह सब ना, पहले तो मैं हाथ से लिखता था सारा जो बाबा बोलता था एक एक को, फिर दीदी ने देखा इसको बहुत मेहनत करनी पड़ती है, तो मुझे एक टेप मशीन दिया कि तुम टेप कर लिया करो, जब थक जाओ ना तो टेप भर लिया करो, फिर टाइप करो। तो मैं टेप भर करके, 88 में टेप थी हमारे पास, टेप भर करके लाया और टाइप किया, तो मेरा एक बहुत बड़ा एक कितना पेज बन गया, 120 लोगों के वरदान। तो मैं दादी के पास लेकर के गया, हमने कहा दादी आज बाबा ने मधुबन वालों को इतना बोला है, क्योंकि मैं ही बाबा के सामने अकेला रात भर बैठता था, या माइक वाले बैठते थे या मैं लिखने वाला बैठता था, बाकी तो अपना काम उतारा और चले जाते। कोई कोई बैठते थे जिनको बहुत लगन होती थी, आज सारा दिन सारी रात बाबा क्या बात करेंगे, तो कोई कोई भाई बहने बैठते थे, लेकिन सब सो जाते थे। तो मुझे तो ड्यूटी थी, मुझे तो बैठना ही है, तो सारी रात मैंने लिखा और टेप किया, और सुबह टाइप करके जब दादी को दूसरे दिन दिखाया, दादी ने कहा ये मधुबन वालों के लिए वरदान है। मैं कहा हाँ दादी, इतने सारे वरदान क्या करेंगे मधुबन वाले। दादी सबका अपना अपना है, मैं एक एक को टाइप करके दे देता हूँ। बोली भले एक एक को दे दो, फोटो सहित दे दो, सब लगाए अपने अपने कमरों में, लेकिन तुम इसको ऐसा सेट करो जो सभी सेंटर्स वालों के लिए हो जाए। विचार तो अच्छा है। फिर गुलजार दादी से बात किया कि ऐसा मेरा विचार है, दादी ने कहा ये तो बहुत अच्छी बात है, भले भेजो। फिर उन वरदानों को जब सेट किया ना, तो 120 वरदान वो पूरे साल के वरदान बन गए। रोज 4-6 लाइन में लेना था मेरे को, तो ऐसा सेटिंग किया, और उसमें भाव वाली जो लाइन थी वो अपनी तरफ से बनाई, क्योंकि भाव तो बाबा बोलता कम है, कोई कोई मुरली में बोलता है। तो जो पहली लाइन है उसको तो बनाया, सेट किया, लेकिन उसका स्पष्टीकरण बाबा का ही होता है, जो स्पष्टीकरण चार छह लाइन में होता है। तो 88 में वो वरदान मुरली में लिखना शुरू किया और आज तक चलते आ रहे हैं। तो दादी जी ने वो शुरू कराया जोर जबरदस्ती से कह करके मेरे से, और फिर मैंने कहा अभी वो अच्छे लगने लगे सबको, सबने डिमांड किया देश विदेश में, तो बहुत अच्छी चीज है, बहुत अच्छा मंथन चलता है। और दादी जानकी को तो क्लास कराने के लिए और कुछ नहीं पान चाहिए, तो वरदान इतना मशहूर हो गए कि तो रोज मुरली में आने ही चाहिए, कहां से आएंगे। तो फिर सारी मुरलियां स्टडी किया, फिर से अव्यक्त मुरलियां पढ़ी हमने, और फिर वो वरदान और स्लोगन तब से लेकर के रोज मुरलियों में आने लगे नए नए। तो दादी का एक बहुत बड़ा पालना का स्वरूप ये था कि जो मधुबन को मिलता है वो सभी ब्राह्मण परिवार को मिलना चाहिए। आप लोग तो ताजा ताजा खाते हो, बहुत इस पर चर्चा हुई कि मधुबन में मुरली आ चलती है, सेंटर पर एक महीने बाद दो महीने बाद सुनते हैं, ये ठीक नहीं लगता। मेरे को बार बार बुला के बोले तुम मुरली आज सुन लिया और फिर एक महीने बाद दूसरे लोग सुनेंगे, तुम कुछ करो इसके लिए। क्या करें दादी, बहुत प्लानिंग चलती रही, क्या किया जाए क्या किया जाए। फिर आखिर दो महीना पहले तैयार करना शुरू किया कि सभी सेंटर्स एक साथ मुरली सुने, एक जैसी मुरली चले। तो दादी और दादी जानकी की बहुत ही प्रेरणा रही कि कैसे भी करके आप एडवांस मुरलियां भेजो, एडवांस में तैयार करना, फिर सबको ईमेल करना, फिर वो सब अपनी अपनी भाषा में ट्रांसलेशन करें, तेलुगु वाले भी करें तो तमिल वाले भी करें, फिर उड़िया वाले भी करें, और विदेश की कितनी सारी भाषाएं हैं तो उन भाषाओं में भी ट्रांसलेशन मुरली साथ साथ हो। तो दादी जी ने कहा नहीं, जो मधुबन में चलता है वो सब जगह एक जैसा चलना चाहिए। तो फिर वो मुरलियां एडवांस तैयार करके सबको भेजने की सेवा मिल गई। तो इसलिए दो महीने पहले, तीन महीने पहले, अभी मैं विदेश जा रहा था तो हमने कहा अब कितने महीने पहले मुझे करनी पड़ेगी, तो अक्टूबर नवंबर तक की मुरलियां सब सेट करके मैं गया। सबको कम से कम टाइम पर सब चीज मिलती है। तो ये सब दादी जी की पालना की, सारा परिवार हमारा बेहद का विश्व नजर में रखा, केवल मधुबन नहीं, सभी सेंटर्स दादी की नजरों में, सभी टीचर्स बहने। अगर किसी भी कोने में कोई बहन बीमार पड़ जाए और दादी जी को समाचार लिख दे तो दादी जी फिर नींद से भी जाग करके मेरे को बुला के कहेगी इसको अभी पत्र लिखो, इसको पूछो तुमको कोई सल्यूशन चाहिए, तुम यहाँ आ जाओ, या तुम ऐसे करो ऐसे करो ऐसे करो। तो दादी जी के अंदर इतना होता था कि बीमारी के समय उनकी दिल लेने वाला कोई जरूर चाहिए, और पत्र लिखवा करके, हाल चाल पूछ करके, फोन पर बात करके, दादी हमेशा पत्र द्वारा या फोन द्वारा तुरंत उसको जवाब देती और लिखवाती थी। तो ऐसी सेवाएं करने का चांस और सीखने का चांस मिला। तो मैंने इन दो देवियों की चर्चा कर रहा था कि एक तो धन की लक्ष्मी और विद्या की देवी, बहुत ज्ञान अंदर भरा हुआ था, इतना ज्ञान भरा हुआ था जो किसी भी बात का कोई भी प्रश्न दादी के सामने लेके जाओ उसी समय उसका उत्तर लिखा देगी, ठीक ठीक बात क्या कहना चाहिए उसका उत्तर देगी। लेकिन एक दुर्गा का रूप भी कई बार देखा है, कोई ऐसा दुर्गुणी, ऐसा विकारी, ऐसा गलत काम करके भी दादी के सामने अगर आ जाए तो बहुत एक शिक्षा देने वाला रूप भी था। लॉफुल भी थी लेकिन एक लॉफुल होने के कारण कोई उससे अपनी कमियां अपनी भूलें छिपा नहीं सकता। अगर छिपा के गया तो दादी कहेगी इससे बात क्या करनी, इसको भेज दो, ये छिपा रहा है, हेरा फेरी कर रहा है, इसके सामने बात क्या करनी, झूठ बोलता है, फट से पता चल जाता। फिर दादी उसके रूप बहुत अंदर से सीरियस रूप होता था, ऊपर से भले सहन सने रखती थी लेकिन अंदर से दिखाई देता था। दादी इसके दुर्गुणों को, इसकी कमियों को खत्म करने के लिए अंदर अंदर कुछ कर रही, जैसे योग का प्रयोग कर रही, जैसे ये आत्मा बदल जाए फिर बात नहीं करनी, छोड़ देना चाहो अच्छा जाने दो उसको, कुछ नहीं बोलो। कभी कभी फिर काली का रूप भी देखा है, दादी का एक ऐसा विकराल रूप कि अगर कोई गलती करके और महसूस न करे, दादी कहे इसको अभी अभी रवाना कर दो, यज्ञ में रहने लायक नहीं है, बुलाओ इसको भाइयों को, इसको अभी सामान से निकाल दो यहां से। कभी कभी ऐसा रूप भी दिखाई देता था कि दादी फिर अगर कोई गलत कड़ा भूल करके और छिपाना चाहे और छिप करके रहना चाहे तो दादी को यज्ञ के अंदर ऐसे बच्चे पसंद नहीं आए, इसलिए बहुत विकराल रूप भी कभी कभी ले लेते थे, लेकिन फिर शीतला रूप भी थोड़े समय के बाद भूल भी जाना, और अगर वो रियलाइज करके महसूस करके दादी के सामने आ जाए तो दादी कहेगी अच्छा कोई बात नहीं भूल जाओ इसे। अगर महसूस नहीं किया, अहंकार रखा या अपनी बात को सिद्ध करता था तो दादी फिर उसके ऊपर कभी कभी अपना वो भी रूप रख लेते थे। तो सभी रूपों से यज्ञ की इतनी बड़ी सेवाएं दादी ने की हैं, जो आज हम सब के लिए इतना बड़ा क्या यादगार बना है, इतनी बड़ी वृद्धि, इतना बड़ा परिवार साकार में, तो बाबा ने, बाबा के समय कितने बच्चे थे, लेकिन आज कितना बड़ा बेहद का परिवार है। विश्व का एक एक कोना, मैं जहां जहां भी गया हूं, अभी अमेरिका की तरफ, लंदन की तरफ, एक एक बाबा के बच्चे में दादी के प्रति इतना प्यार, इतना दिल का रिगार्ड था। एक एक मेहमान, एक एक पूछे दादी कैसे, पहले बताओ दादी का समाचार क्या है। तो ऐसा मैंने देखा कि दादी की पालना हर एक ब्राह्मण बच्चे के दिल में छपी हुई है, और जरूर दादी अभी भी अव्यक्त रूप में, जैसा बाबा ने कहा है कि दूसरी एडवांस पार्टी वाली आत्माओं से दादी का पार्ट भिन्न रहेगा, ये मधुबन में भी आती रहेगी और वतन में भी आती रहेगी। तो मैं समझता हूँ कि ऐसा कोई पार्ट बाबा के साथ साथ दादी का चलेगा, जो अपने इतने सारे ब्राह्मण परिवार की दादी पालना करती रहेगी अव्यक्त वतन में होते हुए भी, भले निमित्त मात्र कहीं भी जन्म लेगी, लेकिन पार्ट तो बाबा कोई भी बजवा सकता है। और दादी के अंदर बहुत सारी बातें हैं, बाबा ने कहा है कि वो बहुत जोर ध्यान करना चाहती है, तो जो हम सबके दिल की बातें देखी हैं, सुनी हैं, अव्यक्त वतन में रह के अनुभव किया है, मैं समझता हूँ थोड़े दिन में दादी फिर से आएंगी और सभी को अपनी वतन के अनुभवों से शेयर कराएंगे। ठीक है, तो दादी जी के साथ के तो बहुत से अनुभव हैं। हमने कहा, एक दिन मेरे को बोला कि आप कुछ लिखो, तो मैं लिखने लगा तो कई पेज लिख गया, तो मैंने आप छोड़ देता हूँ, किताब बन जाएगी, क्योंकि बहुत समय साथ रहा हूँ और कोई भी रोक टोक मेरे ऊपर नहीं थी। कोई समय भी मैं दादी के पास जा सकता था, कैसे भी, चाहे वो भोजन कर रही हो, चाहे वो सोई हुई हो, चाहे वो कभी कैसे से बात कर रही हो, मुझे जाना है तो मेरे को कोई रोक नहीं था। अभी तक भी लास्ट दिनों में भी दादी से मैं हमेशा अंदर कमरों में मिलता रहा। लास्ट में भी जब मैं विदाई लेकर के विदेश जा रहा था, तो मैंने कहा दादी मैं तो जा रहा हूँ, आप बिल्कुल ठीक रहना जब तक मैं वापस ना हूँ। क्यों कहा? क्योंकि उस समय मुझे डॉक्टर्स ने कहा था कि दादी अधिक समय नहीं रहेगी। मैं, क्यों नहीं रहेगी? क्योंकि पानी सारा शरीर में भर गया था जब मैं जा रहा था। तो मैं गया तो दादी के सामने खड़ा हुआ, बहुत आंखें गहरी बंद थी, फिर भी मैंने कहा दादी मुझे विदेश जाने की छुट्टी है, आप छुट्टी देंगी? ऐसे आंख खोल दिया अचानक, बहुत अच्छी दृष्टि दिया, और दृष्टि दे के आंखें से बंद की, मुझे लगा कि मुझे दादी ने छुट्टी दी है। इसलिए मैंने पूरा 5 सप्ताह का जो प्रोग्राम बनाया था, 5 सप्ताह मेरे पूरे हुए, और जब मैं लंदन में वापस आ रहा था, दादी जानकी से छुट्टी ले रहा था, तब फोन गया कि दादी की तबीयत थोड़ी सीरियस हुई है। तो मैंने कहा मैं तो आ ही रहा हूँ। फिर दादी जानकी ने पूछा मुझे भी आना है? तो निर्भय भाई ने कहा अभी रुक जाओ, बाद में आना। लेकिन जब मैं गाड़ी में बैठने लगा तो गोलक भाई का फोन गया कि दादी को बोलो दादी भी आ जाए। तो मैंने जब दादी को बोलने की कोशिश की, दादी कहीं सेवा पर चली गई थी। तो मैं तो 22 तारीख को आ गया, दादी 21 तारीख को बीमार पड़ी, 22 तारीख अहमदाबाद थी, और मैं भी बॉम्बे अहमदाबाद पहुंचा। मुझे पता चला डॉक्टर्स कह रहे वापस ले जाओ, तो मैं भी तुरंत प्लेन से आया और दादी के साथ साथ ही शांतिवन पहुंच गया। 22, 23, 24 तीनों दिन दादी के सामने योग किया, और 25 को भी जब शरीर छोड़ रही थी तो हम भी दादी के सामने ही थे। वो भी दृश्य देखा कैसे सांसें धीरे 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 डाउन हुई, पल्स डाउन हुए, बीपी लो हुआ, और जब बिल्कुल जीरो पर आया, टिक 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 हुई और आत्मा चली गई। तो वो भी 25 तारीख का समय हम लोग सामने ही थे और विस्तृत सब दृश्य देखा कैसे बाबा ने उसको, बाबा ने कहा ना एक ऐसा मौत किसी का भी, ऐसा शरीर किसी का भी नहीं छूटा है जैसा दादी का। सारा ब्राह्मण परिवार, सब दादियां, सब बड़े भाई पूरे कमरे में सामने थे और दादी ने एकदम अव्यक्त स्थिति को प्राप्त किया। ओम शांति।